ভাবিতম কাদা ভাবদ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণ স্বরূপ, সেই কৃষ্ণের থেকে প্রকাশিত রসধারা, যার মুখ থেকে জগতে প্রকাশিত হয়েছেন তিনি আমাদের শ্রী রূপ গোস্বামী প্রভু, যার চরণানুগত্য বিনা, যার কৃপা বিনা কখনোই নিবৃত্ত নিকুঞ্জে রাধা গোবিন্দের যুগল সেবা সৌভাগ্য কখনো মেলে না, তিনি শ্রী রূপ গোস্বামী প্রভু। চৈতন্যের মনোভীষ্ট সম্বন্ধে চৈতন্য চরিতামৃতে শ্রী রামানন্দ রায় তার বক্তব্যে রেখেছেন যে সাধ্য সার কি এবং সাধ্য প্রাপ্তির উপায়, তাতে তিনি বলেছিলেন সে সখীভাবে যে রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জ সেবা প্রাপ্তি তাহাই সাধ্য সার, সেই সাধ্য প্রাপ্তি বিষয়ে অন্য কোনো উপায় নাই। কিন্তু শ্রী রূপ গোস্বামী প্রভু রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জ সেবা সাধ্য সার প্রাপ্তি বিষয়ে কিছু বিচার করেছেন, রামানন্দ রায় কেবল সখীভাবে তার প্রাপ্তির কথা জানিয়েছেন, কিন্তু কোন সখীভাবে কিভাবে সর্বস্বরূপে সেই সেবা প্রাপ্তি হয় এ সম্বন্ধে রূপ গোস্বামী পাদি তার উজ্জ্বল নির্মণিগ্রন্থে প্রকাশ করেছেন, কারণ তিনি রসপ্রস্থান আচার্য। সখী, নিত্য সখী, প্রাণসখী, প্রিয় সখী, প্রিয় পরমপৃষ্ঠ সখী, এই পাঁচ প্রকার সখীরাই যদিও রাধাকৃষ্ণের সেবা করে থাকেন, তথাপি নিবৃত নতুন যে শ্রী যুগল সেবা যে সাধ্যসার তার প্রাপ্তি বিষয়ে তিনি জানালেন যে পরমপৃষ্ঠ সখীগণ তথা প্রিয় সখীগণের যেখানে সম্পূর্ণ অধিকার নাই, যাদের দর্শনে রাধা গোবিন্দের বিলাস বাহুল্য সংকুচিত হয়, তাদৃশ্য প্রিয় সখী বা পরমপৃষ্ঠ সখীদের সেখানে সেবা সৌভাগ্য অধিক রূপে প্রকাশিত হয় না, পরন্তু রাধা স্নেহাধিকা যে নিত্য সখী, নিত্য সখীদের মধ্যে যে প্রধান প্রধানস্বরূপে যারা প্রাণ সখী রূপে প্রসিত, তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রী রূপমঞ্জরী। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এক সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন নিত্য সখীদের মধ্যে যারা প্রধানা তারাই প্রাণসখী, তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রী রূপমঞ্জরী, তারই আনুগত্যে, তারই সৌজন্যে, তার সৌভাগ্যে আর সকলে হয় সৌভাগ্যবান যুগল সেবনা। শ্রী রূপের চরিত্র আলোচনা করতে গেলে সর্বপ্রথমে শ্রী চৈতন্যের অবদানকে তিনি জগতে প্রবাহিত করেছেন, তাই তিনি চৈতন্যের রূপ, সনাতন ধর্মকে তিনি জগতে রূপায়িত করেছেন, নিবৃত নিকুঞ্জের রাধা গোবিন্দের সেবাবিলাস রূপকে তিনি এ জগতে রূপায়িত করেছেন, শ্রীমৎ ভাগবতের সার সার সংকলন স্বরূপ স্বরূপে তা শ্রী লঘু ভাগবতম। নিবৃত নিকুঞ্জে বিলাস বাহুল্য বর্ণনার্থে সাধন্যকারী শ্রী ভক্তির সমৃত সিন্ধু, আর বিশেষ প্রকারে শ্রী উজ্জ্বল নির্মণিগ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেছেন, গজে রাধা গোবিন্দের লীলা মিলনের পর বিয়োগ বিপ্রলম্বীর পর যে সম্ভব তা বিচার করতে যে তিনি প্রথমে বিদর্ভ মাধব নাটকে তিন প্রকার বিয়োগ ও তিন প্রকার মিলনানন্দ দেখিয়েছেন, তিনি দেখিয়েছেন পূর্বরাগের পর যে মিলন তা সংক্ষিপ্ত সম্ভব নামে প্রশ্ন, মানের পর যে মিলন তার নাম দিয়েছেন সংকীর্ণ সম্ভব, অনন্তর কিঞ্চিত দূর প্রবাসের পর যে মিলন হয়েছে বা প্রেম বৈচিত্র্য ভাবে পর যে মিলন হয়েছে তাই সেই মিলনের নাম দিয়েছেন সম্পন্ন সম্ভব, আর সুদূর প্রবাসের পর যে মিলন দেখিয়েছেন তার নাম দিয়েছেন সমৃদ্ধিমান সম্ভব। এই চার প্রকার কৃষ্ণ লীলাকে বর্ণন করবার জন্য তিনি প্রথমে আরম্ভ করেছিলেন একটি নাটকে বর্ণনা করবেন বলেই ভাবনা নিয়েছিলেন, কিন্তু শ্রীমান মহাপ্রভু তথা সস্তমামাদেবী আদেশক্রমে তিনি দুই ভাগে বিভক্ত করল, কিন্তু একটি বিষয়কে বর্ণনা করবার জন্য তিনি দুইখানা নাটক রচনা করেছেন। কেউ কেউ বলছেন ললিত পদম নাটকে তিনি দ্বারকালীলা বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তা নয়, দ্বারকালীলা বর্ণন করা রূপ গোস্বামীর উদ্দেশ্য না, কিন্তু ওই সমৃদ্ধিমান সম্ভবকে পুষ্ট করবার জন্য, সমৃদ্ধিমান সম্ভবকে পুষ্ট করবার জন্য সেই ব্রজভাবে ভাবিত গোবিন্দের যে মহামহাবিলাস বৈচিত্র্য প্রকাশ করবার জন্যই তার ললিত মাধব নাটক রচনার রচনা। এত ব্যতীত অন্য কোনোভাবে তিনি দ্বারকালীলা বর্ণনা করতে চান নাই। প্রসঙ্গত দ্বারকালীলার বর্ণনা হয়েছে বটে, তিনি সমর্থরতির বিলাস দেখাতে গিয়ে সমর্থরতির বিলাস দেখাতে গিয়েই তিনি সমঞ্জসরতির কথা আলোচনা করেছেন বটে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য সেই ব্রজের সমর্থরতির বিলাস, সেই বিলাসকে পুষ্ট করবার জন্য। সুদূর প্রবাস বিনা তো সেই বিলাস পুষ্ট হয় না, সমৃদ্ধি সম্মান সম্ভব সিদ্ধ করতে গেলে সুদূর প্রবাসের প্রয়োজন। তাই অবলীলাক্রমে শ্রী গোবিন্দ বৃন্দাবন থেকে বাসুদেব স্বরূপে চলে গেলেন শ্রী মথুরায়, সেখান থেকে চলে গেলেন তিনি দ্বারকায়। সুদূর প্রবাস সিদ্ধ হলো, 100 বছর পর আবার বৃন্দাবনে তাদের মিলন হলো, এই মিলনে তাদের সমৃদ্ধিমান সম্ভব সুখ সিদ্ধ হল। অতএব এক ব্রজলীলাকে পুষ্ট করবার জন্য, এক ব্রজলীলাকে প্রকাশ করবার জন্য, এক ব্রজলীলায় সমৃদ্ধিমান সম্ভব সুখকে বিস্তার করবার জন্য তিনি ললিত মাধব নাটক রচনা করলেন। বিদগ্ধ মাধবে তিনি অশেষ অসচাতুর্যের প্রকাশ করেছেন। বিদগ্ধ মাধব নাটকে তিনি ধীর ললিত নায়কের সমস্ত লক্ষণগুলি সুষ্ঠুরূপে পুষ্টরূপে সমৃদ্ধিমান রূপে প্রকাশ করেছেন। বিদগ্ধ নবতারণ্য পরিহাস বিশার নিশ্চিন্ত ধীর ললিত স্যাপ প্রায় প্রেয়সী বস। ও অপূর্ব ভাবে তিনি সেই বিদগ্ধ মাধব নাটকে নাটকে প্রকাশ করেছেন। আবার শ্রী গোবিন্দের প্রতি রাধারানী, রাধারানীর প্রতি গোবিন্দের ভাবের যে উচ্ছ্বাস, বিয়োগ ভাবে তাদের যে মহাভাবের বিকাশ, তা প্রকাশ করেছেন তিনি ললিত মাধব নাটকে। যেমন গোবিন্দের বিরহে রাধার ভিতরে মহাভাবের বিকাশ হয়েছে, তেমনি রাধার বিরহে গোবিন্দের মধ্যে ভাবের বিকাশ হয়েছে, যার জন্য তিনি রুক্মিণীকে আলিঙ্গন করে রাধার আলিঙ্গন সুখাস্বাদনের মহিমায় মূর্ছিত হয়ে গেছে। অতএব ব্রজলীলাকে শ্রী চৈতন্যদের মনোমিষ্ট যে রাগ মার্গ জগতে প্রচার, রাগ ভক্তি লোকে প্রচার, ব্রজের ভক্তি লোকে প্রচার, তা তিনি সত্যই করেছেন তার লেখনীর মাধ্যমে। যেহেতু তিনি সেই চৈতন্যদেবের কাছ থেকে সেই কৃপা প্রাপ্ত হয়েছেন, তার সূত্র প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তিনি বৃত্তি করেছেন, তিনি পাদবৃত্তি তো ব্যাখ্যাও করেছেন শাস্ত্রের মাধ্যমে। যারা বিদগ্ধ পণ্ডিত তারা সকলেই জানতে পারেন। আমি এখানে আমার বক্তব্য শেষ রাখছি। শ্রী চৈতন্যদেবের অতি প্রিয় শ্রী রূপগোস্বামী চরণে প্রণাম জানাই। দন্তি তৃণধারণ পূর্বক তার পাদপদ্মেই প্রার্থনা করি, তিনি জন্মে জন্মে তার পাদপদ্মে ধুলি হওয়ার সৌভাগ্য যেন আমাদের থাকে, তাদের হয়েই যেন আমরা শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দের পাদপদ্ম সেবা করতে পারি। তার প্রাণ গোবিন্দই আমাদের যেন প্রাণ গোবিন্দ হয়, তার সেই বিনোদিনী শ্রী বৃন্দাবনেশ্বরী যেন আমাদের একমাত্র সেব্য দেবী হন, প্রাণেশ্বরী হন। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে।
মধুর বর্ণন কিয়া, अब कार्यक्रम यह अपना समाप्ति की ओर है। किसी प्रकार की औपचारिकता ना निभाते हुए आज के इस कार्यक्रम के सभापति श्री राधारमण जी के गोस्वामी काव्य तीर्थ जितना कि आपका श्रीमद् भागवत एवं अन्य गौड़ीय ग्रंथों में अधिकार है, उतना ही अधिकार आपका भक्तों की नाड़ी के ऊपर भी है। आप आयुर्वेदाचार्य भी हैं, आप वैद्य वैद्यक भी हैं, और नाड़ी देखकर भक्त की गति का वर्णन कभी आपको मौका लगे तो आप भी अपनी नाड़ी अजमा के दिखवा सकते हैं। ऐसे वयोवृद्ध ओजस्वी विद्वान प्रकांड पंडित परम श्रद्धे परम पूज्य आचार्य श्री गौर कृष्ण जी गोस्वामी।
तरंग रंगा संगांग संसदनरा मरुंद वंदेम कांतम नितांत निविदांत गरीदनांतम वांछामि गोकुलपते शरणारविंदम करजत कोमल दंड अकांड स्तंभोहितान्य ब्रह्मांड स्वर्णिम कुंड रखंड रुचिर शिखंड हरिर जयति। सम्माननी विभक्ति रांची जी महाराज दिग्दर्शन रसिक भावुक जन सभापति का जिससे दुश्मनी करनी होती है उसको सभापति बना दे, वो कुछ कह ही नहीं सके तो कुछ कहना तो पड़ेगा। आज रूप गोस्वामी का त्रोभाव दिवस है, मैं सब में सब मान में मानव रूप में रूप गोस्वामी देख रहे हूं, जितने मानव हैं वो मानव रूप जो है रूप गोस्वामी हर एक प्रत्येक के विराजमान है। श्री चैतन्य महारूपानु क्यों कहते हैं, छह गोस्वामी थे, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, छह गोस्वामी को छोड़कर सनातन गोस्वामी सबसे बड़े थे, सनातन आनोग नहीं है रूपान हो गए। इसका क्या कारण है, इसका वास्तविक कारण यह है श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले। चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या था, उनका मनोभीष्ट यह था छोय गोसाई जो ब्रज कई देवास राधा कृष्ण नित्य लीला करी रहे प्रकाश। आज वृंदावन को जो वास्तविक रूप है, वृंदावन का जो महात्म्य है, वृंदावन का जो यश है, वृंदावन का जो कीर्ति है, वृंदावन का जो प्रकाश है, उसका वास्तविक श्री विजय जी को श्री को स्वरूप सारी पास को क्यों किसी चैतन्य महाप्रभु के मनोवी सिद्धांतों का उन्होंने प्रतिपादन किया। कैसा हम इस वृंदावन में जहां हम रह रहे हैं, हम ब्रजवासी वृंदावन को भूल चुके थे, हम राधा कृष्ण को भूल चुके थे, सर्वप्रथम महाप्रभु जी ने श्री राधा तत्व का प्रतिपादन किया है। गौरंग ना होई तो केमन धरिताम दे राधा रो महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के संसार में कौन बतलाता, राधा तत्व का कौन प्रतिपादन करता। आज ये वृंदावन भक्ति का जो केंद्र है सनई सनई विलुप्त होता जा रहा है, पांडित्य की जो सीमा जो है समाप्त होती जा रही है। गौड़िया ग्रंथ लखे लखे गौड़िया ग्रंथ हैं, उनके अब पढ़ाने वाला ही नहीं है, और पढ़ाने वाला है तो पढ़ने वाला नहीं है। क्या दशा होगी, कुछ विचार करिए, कुछ समझिए, कुछ सोचिए, पाठशाला करने से क्या होता है। अगर दस वृंदावन में भी अगर पंडित गौड़िया ग्रंथ के हो जाए तो हाँ वृंदावन का उद्धार हो जाएगा, क्योंकि तो मुझे दिखता नहीं है गौड़िया ग्रंथ पढ़ाने वाला वृंदावन में होगा नहीं, ये अवस्था हो रही है। कुछ विचार करिए, यदि विचार नहीं किया तो भविष्य में ये गौड़िया संप्रदाय जो है अस्तमित हो जाएगा। एक गौड़िया संप्रदाय इसमें चार चार व्रतोत्सव निकलते हैं और एक ही पंचांग है, एक ही पंचांग है और व्रतोत्सव चार है, उनमें ही मतभेद है। बताइए एकादशी के मतभेद हम कहां जाए, किसको पाप लगेगा। उनसे कहिए कि गौड़िया लोग संगठित हो, व्याख्यान से कुछ नहीं होगा, संगठित से होगा। यदि हम गौड़िया संगठित हो जाएंगे तो संसार की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हमको पदच्युत कर दे, किंतु हम आज संगठित नहीं है, हम आप विघटित हो रहे हैं, हमारी आप लोगों से यही अन्नम निवेदन है। मैं 85 वर्ष का हो गया हूँ, आप लोगों से यही मेरी प्रार्थना है, गौड़िया लोग संगठित हों, पढ़ें गौड़िया शास्त्र को, अध्ययन करें और अध्ययन करके समस्त संसार में गौड़िया दर्शन की पताका फहरावें, यही मेरा निवेदन।
गोस्वामी पाद ने अपने मन की ब्रह व्यथा वह आप सबों के समक्ष व्यक्त की। वर्तमान में गौड़िया, जिसको गौड़िया संप्रदाय भी आज कहा जाता है, उसकी क्या दशा है, उसका जो इनके मन में वेदना है उसको व्यक्त कर रहे हैं। वास्तव में आपने जो समय देखा, क्योंकि आपकी अवस्था आज 85 वर्ष की है, आपने जो समय देखा उस समय वृंदावन में गौड़िया ग्रंथों को पढ़ाने वाले अनेक विद्वान थे, उन ग्रंथों का अध्ययन कराने के लिए अनेक पाठशालाएं वृंदावन में चलती थी, अनेक विद्यार्थी उन ग्रंथों का अध्ययन करते थे। किंतु आज इस मंच से मुझे एक बात कहने में संकोच नहीं होगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु के बाद 6 गोस्वामियों ने जो महाप्रभु का कार्य था उसका प्रचार प्रसार किया, उसके बाद श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती, कृष्णदास कविराज आदि कृपा पात्र हुए, उन्होंने गौड़िया ग्रंथों का, गौड़िया संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। श्री बलदेव विद्याभूषण, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती आदि बड़े बड़े विद्वान इस संप्रदाय के हुए, जिनके की द्वारा समय समय पर ग्रंथों की रचनाएं एवं महाप्रभु के नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया गया। किंतु बीच में एक ऐसा भी समय आया जबकि वैष्णवों के ऊपर यवनों के द्वारा अत्याचार भी हुआ, वैष्णवों पर अत्याचार किए गए, मंदिरों को एवं मूर्तियों को नष्ट भ्रष्ट किया गया। उस जो काल था उसके पश्चात पुनः चैतन्य संप्रदाय, इस गौड़िया संप्रदाय को विकसित करने का श्रेय परम पूज्य शील भक्ति विनोद ठाकुर एवं उनके कृपा पात्र शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती को जाता है। वास्तव में आज अगर गौड़िया संप्रदाय अगर है तो वह गौड़िया मठ की वजह से प्रचारित प्रसारित हुआ है। परम पूज्य शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने, मैं समझता हूं कि उन्होंने शायद भविष्य की कल्पना कर ली थी, क्योंकि वह भी अपने आप में एक ज्योतिषी थे, उनको ज्योतिष का ज्ञान था, उन्होंने भविष्य की कल्पना कर ली थी और उन्होंने 1918 में गौड़िया मठ की प्रथम स्थापना की, जो कि आज मायापुर में श्री चैतन्य मठ के नाम से है। उसके पश्चात उन्होंने अपने जीवन काल में 64 गौड़िया मठों की स्थापना की और अपने शिष्यों को यह आदेश दिया कि विश्व के कोने कोने पर जाकर महाप्रभु के नाम का और महाप्रभु के धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो गौड़िया मठ की एक अद्भुत, जिसके के लिए कोई शब्द नहीं है शब्दकोश में कि जितनी प्रशंसा की जाए उतने कम है, उनके द्वारा इस गौड़िया संप्रदाय के महाप्रभु के नाम प्रचार की, गौड़िया ग्रंथों के जितना प्रचार प्रसार किया गया, मैं समझता हूं संभवतः अभी किसी के द्वारा इतना नहीं किया गया। मेरे पूर्वजों को कुछ सौभाग्य प्राप्त हुआ, परम श्रद्धे श्री भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के साथ का, मैंने एक बार महाराज को उनकी डायरी में जो वर्णन है वो मैंने दिखाया था, उनके द्वारा भी उस समय महाप्रभु के नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार भारत के कोने कोने में किया गया। वास्तव में मेरा दुर्भाग्य था कि परम श्रद्धेय महाराज जी जब विदेश यात्रा पर जा रहे थे उस समारोह में मैं उपस्थित नहीं हो सका। हालांकि महाराज का मुझे निमंत्रण प्राप्त हुआ था, पर परिस्थितिवश मैं उपस्थित नहीं हो सका। तो महाराज ने अभी कुछ ही दिन पूर्व 2.5 महीने विदेशों के स्थानों पर जाकर महाप्रभु के उस नाम का प्रचार किया जो महाप्रभु ने पहले कहा था, पृथ्वी ते आचे ज्योतो आदि नगरादि गाम सर्वत्र होवे मम नाम प्रचार, जो कि वह मलिच्छों का देश है अगर कहा जाए, जिनमें कि ना तो किसी प्रकार के संस्कार हैं और ना उनको किसी प्रकार का संप्रदाय धर्म विशेष का ज्ञान है। उनको महाराज श्री ने अपने पवित्र वचनों से, महाप्रभु के नाम संकीर्तन से, कीर्तन के द्वारा महाप्रभु के प्रेम का दान दिया। ऐसे आज के इस कार्यक्रम के आयोजक परम सद्य भक्ति वेदांत स्वामी नारायण महाराज जी से, जो कि इस रूप गौड़िया मठ के भी संस्थापक हैं, और आप भी विदेशों में भी और भारत में भी स्थान स्थान पर महाप्रभु के धर्म का प्रचार कर रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आपसे भी यहां उपस्थित जनों को आशीर्वचन प्राप्त हो।
राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पामनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे। मैं इस आयोजन को संपूर्ण रूप से सफल मानता हूं। आप लोगों ने वृंदावन के मूर्धन्य सिद्धांतविद ऋषि तत्वज्ञ वैष्णव का आचार्यों का आप लोगों ने श्रवण किया। इसके बाद में मैं कुछ अधिक बोलना नहीं चाहता था। मैं संक्षेप में 2-4 वक्तव्यों को निवेदन कर अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। मैं सभापति महोदय राधारमण जी के गोस्वामी श्री गौरकृष्ण गोस्वामी जी के विचारों से पूर्ण रूप से सहमत हूं। कहां रूप गोस्वामी के समय और कहां ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बलदेव विद्याभूषण, यहां तक तो मिलता है। कैसे कैसे बड़े विद्वान और ऋषि तत्वविद हम लोगों के संप्रदाय में हुए। आज की स्थिति को देखकर के सचमुच में बड़ा क्षोभ होता है कि हम लोगों के इतने भंडार पड़े हैं भक्ति रस के, किंतु उसका अध्ययन और अध्यापन नहीं चल रहा है। मैं भी कुछ पहले से ही यही कहना चाहता था। एक तो ये सब चीजों का अभाव, दूसरी बात अभी इन्होंने ये भी बतलाया कि हम लोगों में कौन तारीख को जन्माष्टमी मने, एकादशी मने, इस विषय में भी हम लोगों का एक मत नहीं। इस तरह से न जाने हम लोगों का भविष्य कहाँ है। हम लोग इस विषय में भी लड़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु हमारे संप्रदाय के प्रवर्तक हैं या हम किसी मध्य गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत हैं, इसके लिए भी हम लोग परस्पर लड़ते हैं। हम लोग इस विषय पर भी एक मत नहीं। जो चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि वापिस किवा विप्र किवा नाशी शूद्र के निर्णय जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। लाल कपड़ा वाला व्यक्ति, दंड लेने वाला व्यक्ति भी, ये लोग चैतन्य महाप्रभु के रस विषय में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए ये सब क्षुद्र चीजों को छोड़कर हम लोग कब परस्पर मिल करके विश्व में, जैसे इन्होंने कहा, चैतन्य महाप्रभु जी के विचारधारा को हम विश्व में सर्वत्र ही उड्डयन कर सके। इसके लिए हम लोगों को नए सिरे से कुछ प्रयास करना पड़ेगा। मैं विश्व के प्राय सभी देशों में गया, बड़े बड़े कम से कम तो 50 शहरों में गया। चैतन्य महाप्रभु की इस विचारधारा को श्रवण करने के लिए, अनुगमन करने के लिए बड़ी ललक है। लोग चाहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी का, रूप गोस्वामी का विचार क्या है, हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का विचार क्या है, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का क्या विचार है, ये जानना चाहते हैं और उसका अनुगमन करना चाहते हैं, किंतु उनका कोई ठीक से निर्दर्शन नहीं। कोई कहते हैं पुस्तकों को बेचने से ही केवल रागानुगा और रागात्मिका भक्ति हो जाएगी। कहां रूप गोस्वामी इत्यादि का विचार, रागानुगा परम दुर्लभ वस्तु और इसी से हो जाएगा। इसे अनुगमन करने के लिए रूप गोस्वामी का अनुगमन करने की जरूरत नहीं है, केवल पुस्तक बनाने से या कुछ रुपया वसूल करके मंदिर बनाने से ही हो जाएगा, ये रूपानुगा भक्ति नहीं है। कहते नहीं यही रूपानुगा भक्ति है, रूपानुगा इससे कोई रूप को हम नहीं जानते। इसलिए शुद्ध भक्ति के प्रचार की आवश्यकता है। इसलिए हम लोग सभी लोग सम्मिलित होकर के अपने मतभेदों को भूलकर, उन छोटों में तो रहेगा ही, वो तो हम लोगों के आराध्या देवियों में भी ऐसा देखा जाता है कुछ है, किंतु होते हुए भी हम लोगों को एक मंच पर उपस्थित होकर के इसके लिए कुछ प्रयास करने की मैं आवश्यकता समझता हूं। इसलिए आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि हम लोग इसमें कुछ यथार्थ हम लोग प्रयास करें। जैसे इनके हृदय में टीश है, ऐसे हम लोगों के हृदय में भी टीश आनी चाहिए। जो किस प्रकार से रूप गोस्वामी के विचार को हम लोग विश्व में सर्वत्र शुद्ध और निर्मल रूप में हम लोग प्रचार कर सकें, जगत इसकी आकांक्षा करता है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी कहा था, एक दिन ऐसे आएंगे जो केवल एकमात्र गौड़ीय वैष्णव ही जगत में रहेगा और कोई धर्म नहीं रहेगा, विश्व में ये दिन प्रचारित होगा। रूप गोस्वामी का विचार ही जगत में इससे बढ़कर के उत्कृष्ट कोई विचार नहीं है। अब मैं अपने वक्तव्य पर थोड़ा समय, दो चार मिनट मैं कहना चाहता हूं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं जैन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति शपदान्तिकम्। श्री चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या है, क्या था, इसके संबंध में हमारे गोस्वामी जी ने, अच्युत भट्ट गोस्वामी जी ने, हमारे पूज्य लक्ष्मी नारायण जी ने और श्यामलाल भट्टी जी ने, सभी लोगों ने बड़े सुंदर सुंदर रूप में बताया। हमारे श्रीमान उन्होंने भी बताया, सर्वस्व गोविंद महाराज जी ने भी बताया। उससे अधिक तो कुछ नहीं इकाना है, केवल दो एक वक्तव्य में रखता हूं। श्री चैतन्य मनोभीष्ट ये क्या चीज है। एक तो रथ यात्रा का प्रसंग लेकर के बहुत ही सुंदर रूप में उसका चित्त चरित्रण किया। महाप्रभु के मनोभाव को वो जान करके उसको उन्होंने व्यक्त किया। दूसरी बात, चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट पर जब आते हैं तो चैतन्य चरितामृत में उल्लेख मिलता है, रसिक शेखर कृष्ण परम करु, यही दुई हेतु लीला और उद्गम। कृष्ण रसिक शेखर है, भक्ति स्वामी सिंधु के पहले श्लोक में ही श्रील रूप गोस्वामी ने अखिल रसामृत मूर्ति इत्यादि श्लोक उन्होंने व्यक्त किए हैं। अखिल रसामृत सिंधु मूर्ति है ये कृष्ण, और दूसरे ये परम करुण है। रसिक शेखर होने के नाते राधाया प्रणय महिमा की दृशोवा नई वा स्वादु जिनाद्भुत मधुरिमा की दृशोवा मती है। कृष्ण की तीन मनोवांछाएं जो कृष्ण लीला में पूरी नहीं हो सकी, राधाया प्रणय महिमा, ये कैसी प्रणय महिमा, और कृष्ण के माधुर्य को, मेरे माधुर्य को किस प्रकार से ये आस्वादन करती हैं, आस्वादन जनित कैसा उनको सुख होता है। इसलिए कृष्ण राधा जी के अंतर्निहित भाव और उनके रूप को लेकर जगत में सचिनंदन के रूप में अवतरित हुए। ये तो मुख्य मुखों का मुख। दूसरा, अनर्पित चरिन चिरात इत्यादि श्लोक में जो कहा गया रसिक शखर परम, रस निर्जास प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचार। पहला तो हुआ रसास्वाद, रस निर्जास का आस्वादन करने के लिए जिसको पूरी के गंभीर लीला में उन्होंने आस्वादन किया और आस्वादन आरंभ किया गोदावरी के तट में राय रामानंद से मिलकर, उनसे वो जो दीक्षा कहा उनसे दीक्षा लेकर उसका आस्वादन किया, और रागमार्ग भक्ति करते प्रचारण, रागमार्ग भक्ति का प्रचारण उन्होंने किया। क्या, अनर्पित चरिन चिरात करुणया वतुर्ण कलो समर्पयी तुम उन्नतोज्वल रसांग स्वभक्ति श्रियम, समर्पित ये तुम उन्नत उज्जल रसांग स्वभक्ति श्रियम, उन्नत उज्जवल रस ही श्रीमती राधिका का मदनाख्य मोहनाख्य तक ये भाव है अपने, इसका वितरण नहीं किया जा सकता, इसी का आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण आए हैं आविर्भूत में। इसलिए समर्पयी तुम उन्नत उज्ज्वल रसांग श्री भक्ति श्रीयम, यहाँ पर उन्नत उज्ज्वल रस को संपूर्ण रूप से देने के लिए हैं, इसमें कुछ विचार करना है। राधा जी के भाव दिया नहीं जा सकता, कभी ये कदापि किसी के लिए संभव पर नहीं है वो भाव, वो तो श्रीमती राधिका जी का अपना भाव है, और यही तीनों वंशाएं कृष्ण की वही राधा जी का अपना भाव है, उसके बिना आस्वादन नहीं किया जा सकता है। इसलिए उन तीनों भावों के द्वारा तो उन्होंने आस्वादन किया, और दिया क्या, उन्नत उज्ज्वल रसांग स्वभक्ति श्रियम, क्या चीज उन्नत उज्ज्वल रस, ये स्वभक्ति श्रियम, स्वभक्ति माने स्व कृष्ण की अपनी, कौन है स्वरूप शक्ति लादनी शक्ति इत्यादि का सार जो है मूल वो श्रीमती राधिका जी ही है, भक्ति स्वरूपणी वो स्वभक्ति, कृष्ण के प्रति उनकी जो भक्ति है उनकी सेवा है, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं है, ये साध्य शिरोमणि है। इसलिए ये देने की बात नहीं, उसकी भक्ति की जो शोभा है, शोभा क्या, जैसे श्रीमती जी को लता बतलाया गया, उनके पत्तों को और उनके पुष्पों को और बतलाया गया सखियां, और शोभा स्वरूप क्या है, मंजरी है, लताओं की जो मंजरियां होती हैं, जहां हवा का थोड़ा सा झोंका आया, यदि उसमें पत्र पुष्प और मंजरी न रहे तो उसकी शोभा नहीं होगी, वो तो काली से एक रेखा के समान में वो खड़ी है, हवा से उसके झोंकोरे से कुछ नहीं हो सकता। लता का सौंदर्य उस मंजरी के झोंके से इधर उधर हिलने में है। ये मंजरियां, रूप मंजरी इत्यादि जो हैं, ये उन्नत उज्ज्वल रस की ये शोभा स्वरूप हैं। संबंधानुगा, कामानुगा और उसमें तत्त्व इच्छा भावमयी इत्यादि में इसको अच्छी तरह से बतलाया गया, जिसमें ललिता विशाखा इत्यादि के भाव से भी ये रूप मंजरी या इनके अनुगत जो मंजरियां हैं, रस मंजरी इत्यादि जो है, ये दोनों को ही प्राप्त करती हैं, दोनों का आस्वादन, इनके भावों का भी, जो ललिता इत्यादि के, विशाखा इत्यादि के जो अष्ट सखियां इत्यादियों के भाव हैं, और साथ साथ में मंजरियों का अपना जो एक रसास्वादन है, ये दूसरे किसी में संभव नहीं है। इसलिए यहां पर हम विचार करके जब देखते हैं तो देखते हैं रूपानुग में और रागानुगा में एक होते हुए इसमें कुछ रूपानुग का वैशिष्ट है। राग कृष्ण के प्रति होना ही यही रागात्मिका का लक्षण है, जिसमें स्वाभाविक रूप से आत्मा में ही अनुराग है कृष्ण के प्रति, तैल धारावत अविच्छिन्न गति से है। यह राग है गोपियों का कृष्ण के प्रति अनुराग। किंतु एक विचार है, ये तो हनुमान में भी हो सकता है यह राग आंशिक रूप में। ये महिषियां सत्यभामा इत्यादि में भी यह राग कुछ न कुछ रूप में है। ब्रज के और परिक्रमों में भी जैसे सख रस है, बासल रस में है, इनमें भी अनुराग है। ये लोग भी रागात्मिक भक्ति कहलाते हैं। सर्वोत्तम रूप में गोपियों में और सीमा रूप में ये श्रीमती राधिका जी में विराजमान है। यह रागात्मिका के प्रति जिसका लोभ उत्पन्न हुआ और लोभ उत्पन्न होने के बाद में उनका अनुगमन जो इस जगत में कर रहे हैं, जैसे कि गोस्वामी और ये सब लोगों ने कहा था पूज्यपाद, किस प्रकार से इस यथास्थित शरीर के द्वारा, सिद्ध शरीर के द्वारा और एक मानसी सेवा या तीनों के द्वारा, अंत चिंतित सिद्ध देह के द्वारा तब करते हैं, तो इसको कहते हैं रागानुगा। किंतु रूपानुग का एक अलग वैशिष्ट्य है। रूप गोस्वामी के पहले, हमारे चैतन्य महाप्रभु के पहले भक्ति थी रामानुज में, संप्रदाय में, मध्व संप्रदाय में और संप्रदाय में भक्ति थी। किंतु चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से श्रील रूप गोस्वामी ने उसको भक्ति के रस में परिणित किया। पहले भक्ति रस नहीं था, था भी तो पूर्ण रूप में नहीं होगा। जयदेव गोस्वामी त्यागी जी ने किया है, किंतु इस प्रकार से सामग्रियों का विचार कर उसके मिलन से कैसे रस होता है, इस प्रक्रिया को देने वाले चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्रील रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी ने इनका यथाजथ विवेचन किया सामग्रियों का। और हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने किस सामग्री को किस रूप में किस अवस्था में इसका सम्मिलन किया करके रस हो, ये रघुनाथ दास गोस्वामी ने विलास पुष्पांजलि स्तौली में विशेष करके ब्रज विलास स्तौ और विशाखानंद स्त्रोत्र में ये सेवा इत्यादि की परिपाटी और भावना की परिपाटी, इसको कैसे मिला करके मधुर बनाया जाए, इसको इन्होंने किया। चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने विभिन्न परिकरों को विभिन्न आदेश दिए, जिसमें स्वरूप दामोदर जी को रसमय उपासना के लिए, उसका प्रचार करने के लिए जगत में उन्होंने आदेश दिया। उस रसमय उपासना के दो पंथ, इन दोनों को अपने दोनों कर्चों में, दो प्रकार के कर्चों में हमारे स्वरूप दामोदर जी ने अंतःपंथा और बहिःपंथा का विचार किया। अंतःपथ को उन्होंने, रसमय उपासना को ये दिया हमारे रूप गोस्वामी के और हमारे रघुनाथ गोस्वामी के कली में दिया, जिसको उन्होंने अनुभव कर में तो नित्य सिद्ध हैं, दिखलाया है? और उसका जगत में उनकी स्थापना की। दूसरी बात बहिःपंथा बक्रेश्वर पंडित और उनके माध्यम से गोपाल गुरु गोस्वामी और ध्यानचंद्र की पद्धतियों को द्वारा जगत में उसको अभी तक उस वहां पर उनके पीठ में सुरक्षित है। ये सब हमारे रूप गोस्वामी को, रूप गोस्वामी ने इनका यथाजथ विचरण विवेचन किया है। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, हमारे भट्ट गोस्वामी और इन लोगों ने विशेष रूप से विचार किया है, किंतु मैं केवल थोड़े से शब्दों में ही ये विचार करूंगा। श्रीमद् भागवत के श्लोक में है, तेने ब्रह्मरिदा जयाद कवये मुह्यंत जत सूरयः। तेने ब्रह्मरिदा, ब्रह्मा के हृदय में उन्होंने श्रीमद् भागवत को प्रकाश किया। यह भी हमको ऐसा मालूम पड़ता है कि ये बहिरर्थ है। तेने ब्रह्म हृदय जो आद कवये, आद कवि हमारे सुखदेव गोस्वामी को भी मान लिया जाए, उसमें रस ब्रह्म को प्रकाशित किया किसने, स्वयं कृष्ण ने। तेने ब्रह्म हृदय जो आद कवये, ब्रह्म यहां पर ब्रह्म माने रस ब्रह्म। भागवत में जो जो निगम कल्पतर और गलितंग फलम सुख मुखाद अमृत द्रवसंयुतम, उनके हृदय में प्रकाशित करके और जगत में श्रीमद् भागवत के माध्यम से प्रकाशित किया, ये चैतन्य महाप्रभु जी की इच्छा थी।
रूप शिक्षा के द्वारा,
रूप शिक्षा के द्वारा। रूप शिक्षा नहीं होती तो ये सब कभी संभव नहीं होती। मैं तो एक आज सोचते सोचते ये सोचा, तेने ब्रह्म हृदय आद कवये मुह्यंत जत सूरयः। चैतन्य महाप्रभु आदि रस के सर्वस्व श्रृंगार सर्वस्व हैं, क्योंकि वही कृष्ण हैं। इसलिए यहां पर बतलाया गया, जन्मादस्य जतः, जन्म आदि, आदि माने श्रृंगार रस, श्रृंगार रस के दोनों पोषक कौन, राधा और कृष्ण जी स्वयं, ये दोनों नहीं उसके ये आदि हैं, नहीं तो यह रस ही नहीं होता। ये दोनों जहां सम्मिलित होकर के चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। त्रीनि ब्रह्म हृदय आद कवये, आद कवये रूप गोस्वामी, क्योंकि ये रसमय, ये रूप मंजरी। उसमें चैतन्य महाप्रभु ने काशी वहां प्रयाग में रहते हुए तेने ब्रह्म जा आद कवये, आद कवि हमारे रूप गोस्वामी क्योंकि मंजरी हैं। इन्होंने भक्ति रसा में सिंधु और उज्जल नीलमणि जैसे ग्रंथों में चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा से उनके मनोभीष्ट को जानकर और उन्होंने इसके रूप में प्रकाशित किया। तेने ये कौन किया, उन्होंने किया हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु, जो राधा और कृष्ण दोनों के भावों से ओतप्रोत हैं। राधा जी का भाव उनकी अंग कांति और अपना ये कहां रसामृत सिंधु, अखिल रसामृत सिंधु कृष्ण और महाभावती श्रीमती राधिका, दोनों का संयोग मिल करके और इन्होंने रूप गोस्वामी जो आदि कवि है उनके हृदय में प्रेरणा की, और नहीं तो ये कभी संभव नहीं हो सकता था जो ऐसे सुंदर ग्रंथ ये लिख सके। ऐसे रूप गोस्वामी के चरणों में मैं अपनी श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। अधिक मैं आप लोगों का समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि बहुत रात हो गई है, आप लोगों को जाना भी है, इसलिए मैं आप लोगों के चरणों में मैं, सबके चरणों में, आचार्य चरणों के और विद्वान और रसिकों के चरणों में मैं आकृति से काकुति से प्रार्थना करता हूँ कि रूप गोस्वामी की कृपा को मैं उपलब्ध कर सकूं और उनके चरणों की धूली की धूली की धूली की धूली मैं कभी भी बन सकूं। यही आप लोगों से प्रार्थना करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। श्रील रूप गोस्वामी भी हमारे ऊपर में कृपा करें, यही कह करके अपना वक्तव्य समाप्त
के द्वारा आपने श्री रूप गोस्वामी के, अगर महाप्रभु रूप गोस्वामी को प्रयाग में भक्ति का संदेश नहीं देते तो ये भक्तों को भी आगे भक्ति का संदेश नहीं मिलता। तो महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षा देकर, उनको प्रेरणा देकर भक्तों के हृदय में वह भक्ति का संचार किया। इस प्रकार परम श्रद्धेय महाराज जी के प्रयास से यह आज का कार्यक्रम एक बड़े सफल कार्यक्रमों में से संपन्न हुआ। मैं मंच पर आसीन समस्त वक्ताओं से परम श्रद्धेय महाराज जी के धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ एवं उपस्थित भक्तजनों को भी धन्यवाद ज्ञापन करते हुए श्री राधा रमण देव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वह भी भक्तजनों को रूपानुन भक्ति की वह किंचित धूलि प्राप्त करने के लिए प्रेरणा दें एवं इस सभा के संचालन में मेरे द्वारा कोई भी त्रुटि अपराध हुआ हो तो समस्त विद्वानों के, महाराज के एवं भक्तजनों के श्री चरणों में मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।